मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज नवंबर का पहला दिन है, यानी कि 1 नवंबर 2018 है, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि फिलहाल हम लोग जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर है आपके मेंस का, उसके कुछ टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, और उसके तहत अभी तक हम लोगों ने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, पहले तो इसकी चर्चा की, और इसके बाद फिर एथिक्स पर बात की, एटीट्यूड पर बात की, और फिर एप्टीट्यूड पर भी हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत की है। और मेरे जो बातचीत करने का जो आधार रहा है वो कुल इतना कि इस संबंध में आपकी जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वह डेवलप हो जाए। जब आप अपना सिलेबस देखेंगे फोर्थ पेपर का, तो उसी के तहत आप जो एप्टीट्यूड है उसको पाएंगे कि सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, यानी कि जो आपका एप्टीट्यूड है वो जनरल एप्टीट्यूड के संदर्भ में नहीं है, वो सिविल सर्वेंट के एटीट्यूड के संदर्भ में है। क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपका आपसे किस तरह के एप्टीट्यूड की जरूरत महसूस की जाती है, जिसे हिंदी में अभिरुचि कहा गया है, लेकिन मैंने इसके लिए बकायदे अभिक्षमता और अभियोग्यता शब्द का भी इस्तेमाल किया है। जब आप उसी सिलेबस को आगे देखेंगे, यानी कि सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, फिर उसी के साथ जुड़ा हुआ है तथा बुनियादी मूल्य, यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए कौन से फाउंडेशन वैल्यूज होते हैं। अब देखिए कि एप्टीट्यूड तो एक बीज हो गया, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप आईएएस बनना चाहते हैं वो एक अलग बात है, देखिए ये आपकी इच्छा है, डिजायर है, लेकिन सवाल ये है कि वो बनने का बीज आप में है कि नहीं है, वो सरकार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार तो वही ढूंढ रही है ना, यूपीएससी वही ढूंढने की कोशिश कर रही है। भाई आप आईएएस बनना चाहते हैं तो सोच के देखिए कि क्यों बनना चाहते हैं। सच तो यह है कि उसमें पावर है, उसमें काम करने के अवसर मिलते हैं दूसरों के, चलिए हम यही आपके आदर्शवादी बात को मान लेते हैं कि सेवा करने का मौका मिलता है, समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, समाज में सम्मान है। डेफिनेटली जैसे ही आप आईएएस बनते हैं, आप यूं कह लीजिए कि आपके प्रति लोगों की एकदम धारणा बदल जाती है, आपको एक एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट मिलने लगता है, इसमें नो डाउट। सैलरी भी अब अच्छी खासी हो गई है, सुविधाएं तो रहती ही रहती हैं, और आप जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आसानी से आपको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है, नौकरी के बाद भी आप निश्चिंत रहेंगे खत्म हो जाने के बाद। तो इस प्रकार से सिविल सर्विस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, और ये जो अट्रैक्शन है ये आपके अंदर डिजायर पैदा करता है कि यार बनना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि उसका एप्टीट्यूड है कि नहीं है, उसका बीज आपके अंदर है कि नहीं है। यही एग्जामिनेशन के माध्यम से जो सिविल सर्व जो यूपीएससी है जानने की कोशिश करता है, ये क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि जब हम बुनियादी मूल्यों की बात करते हैं, देखिए एप्टीट्यूड बीज हो गया, उसको अब आप किनारे कर दीजिए, इसके साथ मिक्सअप मत कीजिएगा। इसलिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाए और मामला सब गड़बड़ हो जाए। तो ये जो बुनियादी मूल्य है ये क्या है, ये इनफैक्ट उस बीज से निकली हुई डगाले हैं, शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। मतलब बीज है, यानी कि आप प्रशासक बन सकते हैं, आपका पेंट ऑफ माइंड यानी कि दिमाग का जो झुकाव है इस तरीके का, आपका इसमें इंटरेस्ट है। अब आप देखिए कि जब सिविल सर्वेंट आप बनना चाहते हैं तो ये बात अलग है कि उसमें हर कोई आईएएस के लिए भरता है, लेकिन उसमें बहुत से लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आईएएस के लिए नहीं भरते, कुछ लोग आईएफएस में जाना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। और पहले तो अगर आपको इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है तो फर्स्ट 10 में आना पड़ता था, सोचिए शुरू 10 लोगों में से आईएफएस के 3-4 पोस्ट होती थी, खत्म हो चुकी होती थी, फर्स्ट प्रेफरेंस होता था। बहुत लोग आईएएस में नहीं जाना चाहते, वो बकायदे आईपीएस में जाना चाहते हैं, कुछ लोग सीधे कस्टम और एक्साइज और इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं, कुछ लोग तो सीधे सीधे आप ताज्जुब करेंगे ऑडिटेड अकाउंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि यार यहां एक तो जिंदगी ठीक ठाक है, ज्यादा भागम दौड़ नहीं है, ज्यादा मार धाड़ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ट्रांसफर भी नहीं होंगे, जो होंगे भी तो बड़े शहरों में होंगे, तो अब अपनी अपनी च्वाइस है। तो उनका बेंट ऑफ माइंड ऐसा नहीं है, हर कोई आईएएस नहीं बनना चाहता, याद रखिए। तो जो एप्टीट्यूड है वो बेंट ऑफ माइंड है कि आप कि दिमाग की संरचना किस तरीके की है, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं बुनियादी मूल्यों की, वो हर से एक्सपेक्ट की जाती है। याद रखिए, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि ये मूल्य आपके होंगे। फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि ये सिविल सर्वेंट क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, तब मुझे लगता है कि ये फोर्थ पेपर के साथ आप ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे। राइट, देखिए, मोटे तौर पर अगर हम सेवाओं को देखें कि किस तरीके की सर्विसेज होती हैं, तो मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं केवल समझने के लिए, तो तीन तरह की सर्विसेज मानी जा सकती हैं, तीन तरह की। एक है सिविल सर्विसेज, तो इसमें शब्द है नागरिक, यानी कि आप सीधे नागरिकों के बीच जाकर उनकी सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। पुलिस में भी देखिए, आप नागरिकों की सेवा करते हैं, सबके सब नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। इस लिहाज से आप मान के चले कि जुडिशरी भी, हालांकि वो न्यायिक सेवा है, ठीक वैसे जैसे कि पुलिस सेवा है, तो पुलिस सेवा अलग है, रेवेन्यू सर्विसेज अलग है, लेकिन ये सब के सब नागरिकों के बीच जाकर के ही काम करते हैं, नागरिकों के लिए ही काम करते हैं, उनके बीच रहते हैं। राइट, हालांकि ठीक है, जुडिशरी को थोड़ा सा उस तरह से मिक्सअप होने की अनुमति नहीं है कि उनकी तटस्थता बनी रहे, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, लेकिन चलिए हम अभी मिक्सअप कर लेते हैं। जो दूसरी सेवा होती है वो फिर होती गैर नागरिक सेवा। गैर नागरिक सेवा का मतलब हुआ आर्मी सर्विसेज, सैन्य सेवा जिसे आप कहेंगे। अब ये देखिए कि अब ये बात अलग है कि कोई भी काम नागरिकों से ही जुड़ा हुआ है, तो आप प्रत्यक्ष रूप से तो नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, देश की अगर रक्षा कर रहे हैं तो नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं। तर्क की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि जब बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी चीजें आ जाती हैं या दंगे छिड़ जाते हैं, तो ये आर्मी ही डिप्लॉय की जाती है ताकि लोगों की रक्षा की जा सके। तो हालांकि आर्मी ठीक है, समय जरूरत पड़ने पर इस तरह के कामों को भी अंजाम देती है, लेकिन बेसिकली उसे एक अलग सेवा मानी गई है, और वो है सैन्य सेवा। तो सीमा पर रहेंगे, या शहरों में भी देखिए, आप आगरा में देख लीजिए तो आगरा कैंट अलग से बना हुआ है, तो मतलब वो शहर में रहते हुए भी शहर के किनारे रह रहे हैं, उनकी अलग से छावनी बनी हुई है। तो ये दूसरी सेवा होगी। और जो तीसरी सेवा होती है वो होती है प्राइवेट लोगों की सेवा, प्राइवेट निजी कंपनियों में काम करना, निजी व्यवसायों में काम करना, अपना ही काम कर लेना, लेकिन अपना काम करना वो उद्यम माना जाता है ना, उद्योग माना जाता है या व्यापार माना जाता है, उसको सेवा नहीं माना जाता। आपने उद्योग लगाया हुआ है, आपके यहां कोई सर्विस कर रहा है तो वो सेवा कर रहा है। राइट, तो इस तरीके से तीन तरह की सर्विसेज मानी गई है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, यानी कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि आप किस सिस्टम में काम कर रहे हैं। लोगों के लिए काम कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से आप काम कर रहे हैं, इनफैक्ट आप ही सरकार हैं, ठीक है। लेकिन वो सरकार किस तरीके की है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में हमारी जो सरकार है, हमारा जो संविधान है, वो लोक कल्याणकारी है। राइट, पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, हम लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लोगों पर शासन नहीं कर रहे हैं, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, लोगों पर रूल नहीं कर रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स ने किया है लोगों पर रूल, हम नहीं कर रहे हैं, उसी के लिए तो आजादी चाहते थे हम, तो हमारा जो शासन है वो लोक कल्याणकारी शासन है, लोगों का कल्याण करना, लोगों पर शासन करना नहीं। अब ये बात अलग है कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपको इस तरह के दायित्व तो दिए जा सकते हैं कि आप कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखें, और कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखने के दौरान आपको शासन करने की नीति का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन उसका जो मूल मकसद है वो लोगों पर रूल करना नहीं है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, दोनों में फर्क है। जब शासन करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी दादागिरी है, लेकिन कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जब हम बात करते हैं तो फिर यह है कि ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता रहे, उस जिम्मेदारी को निभाना होता है। तो मित्रों, दो पॉइंट आपको बहुत क्लियरली अपने दिमाग में रखने हैं। याद रखिए, नंबर 1 कि आप सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट होने का क्या अर्थ होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। और ये बात इसलिए बताना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी आप देखिए कि जब ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप पढ़ते हैं तो दिमाग आपको क्या पढ़ने को मिलता है कि अभी भी जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनका दिमाग औपनिवेशिक शासन वाला दिमाग है, यानी कि ब्रिटिशर्स का जो दिमाग हुआ करता था ब्रिटिश के समय, राज्य के समय में जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी या जो प्रशासनिक अधिकारी थे, आज भी उनका दिमाग उसी तरह से है। वो अपने को रूलर समझते हैं, अपने को माई बाप समझते हैं पब्लिक का, उसे चेंज किया जाना चाहिए। और आपके जो आंसर होंगे फोर्थ पेपर में वो इसी के आधार पर होंगे कि हम सिविल सर्वेंट हैं, सिविल रूलर नहीं है। दूसरी बात मैंने कहा कि लोक कल्याणकारी, आपको लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। तो जब आप इन दोनों को मिक्सअप कर देंगे तो बट नेचुरल है कि फिर इसको आप अंजाम दे सके। आपकी पहचान हो गई कि आप सिविल सर्वेंट हैं और आपका काम हो गया कि आपको लोगों का कल्याण करना है, राइट? तो अब इन दोनों को मिला दीजिए तो अब आपसे किस तरह के वैल्यूज की उम्मीद की जाती है? बेसिक वैल्यूज जो सब में होना चाहिए, यानी कि केवल आईएएस में ही हो या केवल नीचे के लोगों में ही हो, भैया कि वो तो सर्वेंट का काम है तो थर्ड कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी में हो, हम तो सीधे सीधे यूपीएससी से ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिशन करके कॉम्पीट करके आए हुए हैं तो हम तो बहुत महान है। नॉट एट ऑल। आप अपनी तरफ से सोचते रहिए, अपने लोगों से सोचवाते रहिए, लोगों को सोचने दीजिए वो जो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है कि कुछ बहुत ही बेसिक करेक्टर आपके होंगे, वर्चूज आप में होने चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए। तो आप देखें कि वो किन किन गुणों की बात करते हैं जो बुनियादी मूल्य है। ये मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि बुनियादी मूल्यों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए जो फोर्थ पेपर है वो है ना कि आपकी मनोवृत्ति का विश्लेषण कर रहा है, मैंने शुरू में आपको बताया है, तो आपकी मनोवृत्ति वो देख रहे हैं ना, और आप क्या मनोवृत्ति वाले हैं, सिविल सर्वेंट होने जा रहे हैं, तो देखेंगे वो कि आपकी मनोवृत्तियां सिविल सर्वेंट के लायक हैं या नहीं है। इसीलिए मैंने अभी आपको तथ्य कुछ भी नहीं बताया है, केवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और बार बार मैं चीजों को रिपीट जानबूझ के कर रहा हूं मित्रों कि वो बातें आपके दिमाग में घुस जाए, राइट? देखिए वो क्या क्या फाउंडेशन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। आप में सत्य निष्ठा होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू सत्य निष्ठा, बल्कि ये इतना महत्वपूर्ण है मित्रों कि मैं नेक्स्ट में आपको सत्य निष्ठा के बारे में ही बताऊंगा कि इंटीग्रिटी क्या होती है, राइट? क्योंकि इंटीग्रिटी एक इतनी बड़ी चीज है जिसमें दूसरे सब समा जाते हैं। सत्य निष्ठा होनी चाहिए, आप भेदभाव से रहित हों, आप तटस्थ हों, आप निष्पक्ष हों, पब्लिक सर्विस के प्रति आप में कमिटमेंट हो, स्पिरिट ऑफ सर्विस होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। और स्पेशली जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति आपके मन में सहानुभूति होनी चाहिए, सहिष्णुता का भाव होना चाहिए और संवेदना होनी चाहिए। ये कुछ आपके सिलेबस में बकायदे मेंशन किए हुए हैं कि ये गुण होना आवश्यक है। अब आप देखेंगे कि ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं, आपको क्या लगता है कि ये बातें केवल सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, आदमी में नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, या फिर यूं कह लीजिए कि किस में नहीं होनी चाहिए। याद रखिए कि पुलिस में भी होनी चाहिए, याद रखिए कि आर्मी वालों में भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों में होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपसे स्पेशली ये जानना चाहा गया है कि ये तो होना ही चाहिए, आपसे एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई छूट नहीं है। देखिए दूसरों में छूट है भाई, ये तो एक तरह से नैतिकता, दूसरों के लिए वो नैतिकता का सवाल हो गया। याद रखिए मैंने कहा था ना कि नैतिकता ऐच्छिक होती है, ठीक है? आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं मदद करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए हैं और आप आईपीएस अफसर हैं, किसी को मदद की जरूरत है, तब आपकी वो अब ऐच्छिक स्थिति नहीं रह गई है, वो आपका वैल्यू बन चुका है, उस वैल्यू में नैतिकता है। इतना तो समझ में आपको आ गया होगा कि वैल्यू बहुत बड़ा छाता है, स्पेशली मैंने कहा था समझाने के लिए, जिसमें नैतिकता छोटी छोटी चीजें उस छाते के नीचे बैठी हुई है। तो ये आपके लिए वैल्यूज है, याद रखिए, ये आपकी नैतिकता नहीं है, यानी कि ये आपके लिए अनिवार्य हैं, इनमें आप कोई लिबर्टी नहीं ले सकते। और इसमें देखिए खासकर जो कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति की बात कही गई है, आप अपने जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर के सिलेबस को पलटिए, सेकेंड पेपर के सिलेबस को, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए कि उसमें दिया हुआ है बकायदे वीकर सेक्शन के नाम दिए हुए हैं और बकायदे उनके प्रति क्या होना चाहिए वो दिया हुआ है, बकायदे उसमें महिलाएं और दूसरा जो कम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो वर्ग हैं, पिछड़े हुए वर्ग के जो लोग हैं, गरीब हैं, आप यूं कह लीजिए कि चलिए नाम सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है लेकिन आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए तो वृद्धों पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बच्चों पर पूछ लिए जाते हैं, महिलाओं पर तो पूछे ही जाते हैं। तो ये वीकर सेक्शन है, बच्चे भी वीकर सेक्शन है, वो बेचारे खुद क्या कर सकते हैं, उन्हें आपके मदद की जरूरत है, विशेष रूप से जरूरत है, इसीलिए दिया गया कमजोर वर्गों के प्रति, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं, सरकार ने आपको उनके लिए कुछ काम सौंपे हुए हैं। तो मित्रों ये बुनियादी मूल्य हैं। तो इसमें जितने भी मूल्य हैं इन सब की आप पे अच्छी समझ होनी चाहिए। इसमें दो तीन मूल्य ऐसे हैं जिनके लिए कह लीजिए कि थोड़ी सी अच्छी समझ की जरूरत होती है, अदरवाइज तो सामान्य सी चीजें हैं, आप किताबों में एक दो बार पढ़ेंगे तो सारी बातें आपके दिमाग में एकदम से स्पष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है, मैं अपने इस पॉइंट को यहीं, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करूंगा और डेफिनेटली जैसा कि मैंने वायदा किया है कि नेक्स्ट लेक्चर मेरा इंटीग्रिटी पर होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं और न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप लोगों के पास हैं, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से आप सब देख लेंगे। नमस्कार।